From the conference center at Temple Square in
Salt Lake City, के Temple Square स्थित सम्मेलन से ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह का गिरजे का 188वां वार्षिक महासम्मेलन है। इसके वक्ता गिरजे के जनरल पदाधिकारियों में से चुने गए हैं। इसका संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा होगा। सासंबर के क्षेत्र के ये सदस्य और गिरजे के अधिकारियों को उनके मार्गदर्शक द्वारा सलाह के निर्देशन प्राप्त हो गए। बॉनविल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा ये प्रसारण का संबोधन किया गया है। बिना अनुमति के लिखित करना, रिकॉर्डिंग या प्रतिलेखन उपयोग वर्जित हैं। हेनरी अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार इस अधिवेशन का संचालन करेंगे।
भाइयों और बहनों, हम आपका अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजा के महासम्मेलन के 188वें वार्षिक शनिवार सुबह अधिवेशन में स्वागत करते हैं। संसार भर के सदस्यों और मित्रों, आप जहां भी हों, इस यीशु मसीह के गिरजा सम्मेलन में भाग लेने में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अध्यक्ष रसल एम नेल्सन, जो सम्मेलन में अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने मुझे इस अधिवेशन का संचालन करने के लिए कहा है। आज इस सुबह हम अपने प्रिय भविष्यवक्ता और साथी थॉमस एस मैनसन को, जो जनवरी 2, 2018 में गुजर गए, हम उनके परिवार को हमारी हार्दिक संवेदना देते हैं। उनकी लंबी समर्पित सेवा में संसार भर के अनगिनत लोग आशीषित हुए। हम 70 के एल्डर वॉन गिच क्विच की जिंदगी को याद करते हैं, जो अचानक 26 जनवरी 2018 को गुजर गए। हम उनके परिवार को भी हमारा प्यार और हार्दिक संवेदन व्यक्त करते हैं। इस अधिवेशन के लिए संगीत मैक वेलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन के अंतर्गत मॉर्मन गायक मंडली के द्वारा एंड्रो एंसवर्थ और कैल क्रिस्टेसन के साथ ऑर्गन पर देंगे। गायन मंडली इस सभा का आरंभ स्वीट इज द वर्क गाकर करेगी। अब हमारे लिए थैंक दी ओ गॉड फॉर अ प्रॉफिट गाकर करेंगे और प्रारंभिक परात्मा एल्डर मॉर्मिन बी ऑलनन 70 के द्वारा की जाएगी।
Thank you.
हमारे दयालु और पिता, इस पवित्र अवसर पर हम बहुत आभारी हैं परमेश्वर के भविष्यवक्ता के लिए, जिसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। हम विशेष आशीष मांगते हैं भविष्यवक्ता रसल एम नेल्सन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए जो इस गर्ज को देते हैं। हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके रिश्तेदारों के लिए। हम आभारी हैं पिताजी, हम अपने उद्धारकर्ता को याद करते हैं इस ईस्टर मौके पर। हम उसके उदाहरण के लिए बहुत आभारी हैं, विशेषकर जिस प्रकार से उन्होंने सेवा करी और हम भी उसी की तरह सेवा कर पाए, हमारे सब विशेष भाई बहनों की सेवा कर सकें, विशेषकर जो कि इस समय कमजोर हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन विधवाओं के लिए, उन अनाथों के लिए, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ भी लोग हमारे बैठे हैं परमेश्वर, और जो कुछ लोग यहाँ पे आए हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, काश कि वो अपने मनों में उनके प्रश्नों के उत्तर मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं कि खड़े होकर परमेश्वर का समर्थन करेंगे। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं प्रिय पिता, हम ये सब कुछ कहते हैं बहुत विनम्र होके यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाइयों और बहनों, कि मैं इस कार्रवाई को संभालूं जो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये पूरे विश्व में अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के सदस्यों के लिए विश्व भर में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तारीख अक्टूबर 10, 1880 में, जब जॉन टेलर ने ब्रिगम यंग के रूप में भविष्यवक्ता, दिव्यदर्शी और प्रकटीकर्ता और अध्यक्ष के रूप में सफल रहा, और अंतिम दिनों के संतों के अध्यक्ष इन अवसरों पर में से प्रत्येक को चर्च की आवाज व्यक्त करने के लिए चर्च के एक औपचारिक पवित्र सभा के रूप में नामित किया गया था। हम परिषद और समूह द्वारा वोट करेंगे। जहां भी आप हैं, आपको केवल तभी खड़ा करने के लिए कहा जाएगा जब आपसे अनुरोध किया जाए। अपने हाथों को उठाकर व्यक्त करें कि आप उन लोगों को समर्थन करते हैं जिनका चुनाव किया जाता है, जिनके नाम प्रस्तुत किए जाएंगे। आप केवल तभी वोट देना जब आपको खड़े होने के लिए कहा जाए। मंडप गायक मंडली या टेम्पल स्क्वायर अब असेंबली हॉल को सौंप देने जाने वाली जनरल अधिकारियों ने उन सुविधाओं का मतदान का पालन करेंगे। स्टेक केंद्रों में स्टेक अध्यक्षता के एक सदस्य मतदान का वन करेंगे। अगर किसी को एक विपरीत मत डाले तो वह उन व्यक्तियों को अपने संबंधित स्टेक अध्यक्षों से संपर्क करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। दोबारा प्लीज कृपया खड़े होकर तभी वोट करें जब आपसे कहा जाए। हम प्रथम अध्यक्षता के सदस्यों को खड़े होने के लिए कहते हैं या प्रस्तावित करते हैं कि प्रथम अध्यक्षता रसल एम नेल्सन और भविष्यवक्ता, दिव्यदर्शी और प्रकटीकर्ता के रूप में और अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजा के अध्यक्ष के रूप में समर्थन दें। प्रथम अध्यक्षता के पक्ष में जो हैं, कृपया इसे वोट करें। यह प्रस्ताव है कि प्रथम अध्यक्षता डेलिन हैरिक्स ओक्स को प्रथम सलाहकार और हेनरी बेनियन आयरिंग को गिरजे के प्रथम एजेंसी में दूसरे सलाहकार के रूप में समर्थन करें। प्रथम अध्यक्षता में के पद में उन सदस्यों का जो वोट करते हैं प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया जाता है कि प्रथम अध्यक्षता डेलन हैरिस ओक्स को 12 की परिषद के प्रेरितों के अध्यक्ष में और मेलविन रेल्सल बर्लाट को 12 की परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में समर्थन दें। प्रथम अध्यक्षता के पक्ष में सदस्य अपना वोट प्रकट करें। यह प्रस्तावित किया जाता है कि प्रथम अध्यक्षता को 12 की परिषद के प्रेरितों के सदस्यों के रूप में समर्थन करें। एम रसल बैलट, जेफरी आर हॉलैंड, डीटर एफ उकडोर्फ, डेविड ए बेटनार, क्विंटल एल कुक, टॉड क्रिस्टोफरसन, नील आर एंडरसन, रोनाल्ड आर बर्सबेंड, गैरी ई स्टीफेंसन, डेल गेल रेलुंद,
गैरेट वॉल्टर गॉन्ग and Ulysses Suarez, members of the first presidency,
please vote.
It is proposed that the first
presidency. यह प्रस्तावित करते हैं कि प्रथम अध्यक्षता के समर्थन प्रथम अध्यक्षता के सलाहकारों को और 12 परिषद के परिषद के दिव्यदर्शी प्रकटीकर्ता के रूप में समर्थन करें। प्रथम अध्यक्षता के सदस्य कृपया इसे प्रकट करें।
The presidency will now.
प्रथम अध्यक्षता अब बैठ जाइए। अब हम एल्डर को आमंत्रित करते हैं, एल्डर गॉन्ग और वैरिस को, कि अपने स्थान में आ जाएं। बारह परिषद के सदस्य हैं, जिसमें एल्डर गॉन्ग, एल्डर स्क्वारियस कृपया खड़े होंगे। यह प्रस्तावित किया जाता है कि 12 के परिषद के प्रथम अध्यक्ष रसल मैरियन नेल्सन को भविष्यवक्ता, दीवदर्शी और प्रकटीकर्ता के रूप में और अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह की गिरजा में समर्थन करें, उनके सलाहकार और 12 की परिषद के सदस्यों के साथ जैसा कि उन्हें प्रस्तुत किया गया है प्रथम अध्यक्षता के द्वारा मतदान किया गया। 12 के परिषद के सदस्य कृपया इसे प्रकट करें। अब आप बैठ सकते हैं। हम जनरल अधिकारी 70 की परिषद और अध्यक्ष धर्माध्यक्ष सदस्यों को खड़ा होने के लिए कहते हैं। यह प्रस्ताव किया जाता है कि सब अधिकारी 70 अध्यक्ष धर्माध्यक्ष और प्रथम अध्यक्षता रसल मैरियन नेल्सन और दिव्यदर्शी प्रकटीकर्ता और अंतिम दिनों के यीशु मसीह के गिरजा के अध्यक्ष के समर्थन के उनके सलाहकारों के साथ और 12 परीतों के परिषद के सदस्य जैसा उन्हें प्रस्तुत किया गया है प्रथम अध्यक्षता के पद पर मतदान किया। सभी जनरल अधिकारी 70 के परिषद अध्यक्ष धर्माध्यक्ष के सदस्य जो पक्ष में हैं कृपया इसे प्रकट करें। अब आप बैठ सकते हैं। अब दुनिया में आप जहां भी हो आपसे खड़े होने के लिए कहते हैं। सभी 70 के परिषद नियुक्त कुलपति, उच्च याजक और एल्डर्स। यह प्रस्तावित किया जाता है कि रसल मैरियल नेल्सन को भविष्यवक्ता, दूरदर्शी और प्रकटीकर्ता और अंतिम दिनों के यीशु मसीह के गिरजे के रूप में बनाए रखा जाए और उनके सलाहकार और 12 प्रेरितों की परिषद के सदस्यों के साथ प्रस्तुत जैसा किया गया है मतदान करें। जो भी पक्ष में हो कृपया प्रकट करें। यदि कोई इसके विरुद्ध हो तो प्रकट करें। अब आप बैठ सकते हैं। सहायता संस्था के सभी सदस्य जो 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक वाली महिलाएं हैं कृपया खड़े हों। यह प्रस्तावित किया जाता है कि रसल मैरियन नेल्सन को भविष्यवक्ता, दिव्यदर्शी और प्रकटीकर्ता के रूप में और अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजा के अध्यक्ष के रूप में समर्थन किया जाए, उनके सलाहकारों और 12 प्रेरितों की परिषद के सदस्यों के साथ साथ प्रस्तुत किए जाएं। जो भी पक्ष में है हाथ उठाकर कृपया इसे प्रकट करें। कोई विरुद्ध तो कृपया प्रकट करो। अब आप बैठ सकते हैं। सभी वयस्कों के साथ जो कि 12 परिषद और प्रथम अध्यक्षता के समर्थन का अवसर मिला हो कृपया खड़े हो जाएं। यह प्रस्तावित किया जाता है कि रसल मैरियन लैनसन को भविष्यवक्ता दिव्यदर्शी और प्रकटीकर्ता के रूप में और अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के अध्यक्ष के रूप में समर्थन किया जाए। उनके सलाहकारों के साथ और 12 की परीतों के परिषद के सदस्यों के साथ प्रस्तुत किया जाए और मतदान किया जाए। सभी पक्ष में हो तो हाथ उठाकर कृपया से प्रकट करें। कोई इसके विरुद्ध हो तो प्रकट करें। आप बैठ सकते हैं। 12 से 18 साल की युवतियां कृपया खड़े उठें। यह प्रस्तावित किया जाता है कि रसल मैरियन लैनसन को भविष्यवक्ता दिव्यदर्शी और प्रकटीकर्ता के रूप में और अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के अध्यक्ष के रूप में प्रकट किया जाए उनके सलाहकारों और 12 प्रेरितों के सदस्य के साथ। जो पक्ष में हो कृपया हाथ उठाकर प्रकट करें। कोई इसके विरुद्ध हो तो प्रकट करें। अब आप बैठ सकते हैं। अब पूरी सदस्यता से पूछते हैं जहां भी आप हैं पहले अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्लीज सब खड़े हो जाएं। यह प्रस्तावित किया जाता है कि रसल मैरियन लैनसन को भविष्यवक्ता दिव्यदर्शी और प्रकटीकर्ता के रूप में अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजा उनके सलाहकारों और 12 प्रेरितों के सदस्यों के साथ प्रस्तुत किया जाए और वोट किया जाए। जो भी पक्ष में है कृपया हाथ उठाकर प्रकट करें। कोई इसके विरुद्ध हो तो प्रकट करें। अब आप सब बैठ सकते हैं। भाइयों बहनों आपका समर्थन वोट के लिए धन्यवाद। और उसके बाद हम निवृत्त करने की सेवाओं और अधिकारियों के निवृत्त करने की सेवाओं को शनिवार शाम को करेंगे। अब हम गायक मंडली हमारे साथ वी लिसन टू द प्रॉफिट गाएगी। उस गाने के बाद अध्यक्ष रसल बलार्ड को सुनेंगे जिन्होंने अभी अभी परिषदों की कार्रवाई सदस्य होने का समर्थन। उनके पश्चात एल्डर ब्रायन के टेलर और लैरी जे एको हक 70 के बोलेंगे।
My brothers and sisters, we have just participated in a solemn assembly, a practice that can be traced back to the Bible, when ancient Israel gathered to feel the Lord's presence and celebrate His blessings. We're privileged to live in a time.
एक हम ऐसे समय में रहने के भाग्यशाली हैं जब इस प्राचीन प्रथा को भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ द्वारा पुनर्स्थापित किया गया है। दूसरा, मैं आपसे अपने व्यक्तित्व दैनिकी में इसे लिखने का आग्रह करता हूं, जिसे आपने इस अति पवित्र अवसर पर महसूस किया है। हाल ही में हमने अपने प्रिय मित्र और भविष्यवक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन को अलविदा कहा था। यद्यपि हम सब उन्हें याद करते हैं, लेकिन हम अत्यंत आभारी हैं कि प्रभु ने अपने गिरिजे की अध्यक्षता करने के लिए नया भविष्यवक्ता अध्यक्ष रसल एम नेल्सन को नियुक्त किया है। व्यवस्थित रूप से हमने गिरिजे के इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ किया है। ये परमेश्वर की ओर से एक अमूल्य उपहार है। जब हम सबने अध्यक्ष नेल्सन को अपने हाथों को उठाकर समर्थन किया था, तब हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े हुए अस्वीकार किया कि वो अध्यक्ष मॉन्सन के उचित उत्तराधिकारी हैं। अपने हाथों को ऊपर उठाकर हमने प्रतिज्ञा की है कि हम प्रभु से प्राप्त उनके निर्देशों का पालन करेंगे। प्रभु ने कहा, तुम उसके अर्थात गिरजे के अध्यक्ष सभी शब्दों और आदेशों पर ध्यान दोगे जिन्हें वो तुम्हें देगा जब वो उन्हें प्राप्त करता है, क्योंकि तुम उसके शब्द को इस प्रकार प्राप्त करोगे मानो मेरे स्वयं के मुंह से बोले गए हों, संपूर्ण धैर्य और विश्वास में। मैं हमारे नए भविष्यवक्ता अध्यक्ष को 60 वर्षों से जानता हूं। मैंने इनके साथ 33 वर्षों तक 12 की परिषद में सेवा की है और मैं गवाह हूं कि प्रभु के हाथों उन्हें हमारा अधीक्षक, प्रेरित और भविष्यवक्ता के रूप में तैयार करते हैं कि पृथ्वी पर सभी पौरोहित कुंजियों को प्रभाव में लाने के लिए। आशा है कि हम में से प्रत्येक पूर्ण रूप से उनका और उनके सलाहकारों का समर्थन और उनके निर्देश का पालन करेगा। हम एल्डर गॉन्ग और एल्डर का भी 12 प्रेरितों की परिषद में गर्म जोशी से स्वागत करते हैं। यीशु के पुनरुत्थान वो घटना जिसे हम इस महत्वपूर्ण ईस्टर पर मनाते हैं के बाद वो अपने शिष्यों को दिखाई दिया और कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। दो चरणों के इस कार्य पर ध्यान दें। परमेश्वर अपना पुत्र भेजता है, प्रभु अपने सेवक नश्वर पुरुषों और स्त्रियों को भेजता है उनके कार्य को पूरा करने के लिए। हमें ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि प्रभु का कार्य करने के लिए नियुक्त लोग परिपूर्ण मनुष्य नहीं हैं। धर्म शास्त्रों में ऐसे पुरुषों और स्त्रियों की कहानियां हैं जो बताती हैं कि उन्हें परमेश्वर के महान कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था। हमारे स्वर्गीय पिता के भले बेटे और बेटियों गिरजे में सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया है। वे अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अभी परिपूर्ण नहीं है। यही हमारे बारे में सच है। हमारी मानवीय कमजोरियों और कमियों के होते हुए हम कैसे एक दूसरे को सहारा देते हुए और समर्थन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये विश्वास से आरंभ होता है। प्रभु यीशु मसीह में सच्चा निष्कपट विश्वास, उद्धारकर्ता में विश्वास मसीह के सिद्धांत और सुसमाचार का पहला नियम है। बहुत साल पहले मैं पवित्र भूमि यरूशलेम गया था। जब हम राई के पौधे के सामने से गुजर रहे थे तो बीवाईयू यरूशलेम केंद्र के निदेशक ने पूछा, क्या मैंने कभी भी राई का दाना देखा है? मैंने कहा, नहीं। तो हम रुक गए। उसने मुझे राई के पौधों के दाने दिखाए। वे बहुत ही छोटे थे। तब मुझे यीशु की शिक्षा याद आई, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगी कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाए तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। यदि हमारे पास राई के दाने जितना छोटा विश्वास है, तो प्रभु के कार्यों में निराशा और संदेह के पहाड़ों को हटाने में हमारी मदद कर सकता है। जब हम परमेश्वर के बच्चों अर्थात परिवार के सदस्यों, गिरजे के सदस्यों और उनके साथ काम करते हैं जो अभी हमारे गिरजे के सदस्य नहीं हैं, भाइयों और बहनों, जीवन विश्वास, आनंद, सुख, आशा और प्रेम से भर जाता है जब हम मसीह में थोड़ा सा ही बेशक राई के दाने के बराबर सच्चा विश्वास करते हैं। एल्डर जॉर्ज ए स्मिथ ने भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ से उन्हें मिली कुछ सलाह को याद किया। उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। यदि मैं नोवा स्कॉटिया के गहरी खाई में गिर जाऊं और रॉकी पहाड़ मेरे ऊपर गिर जाए, तो भी मुझे निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन धैर्य रखना, विश्वास करना और उत्साह को बनाए रखना, और मैं अंततः सारी कठिनाइयों से उबर कर बाहर निकल आऊंगा। हम पौलुस को याद कर सकते हैं, मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है, ये याद रखते हुए कि वो परमेश्वर का अन्य बहुमूल्य उपहार है। जिन उपहारों को मैंने बताया है उनके अलावा बहुत से दूसरे भी हैं। मैं आपसे कुछ के बारे में बात करता हूँ, सप्त दिन, प्रभु भोज, दूसरों की सेवा का उपहार और परमेश्वर के हमारे उद्धारकर्ता का अनुपम उपहार। सप्त दिन की शक्ति को गिरजे में और घर में खुशी, आनंद, प्रभु की आत्मा की गर्मजोशी को बिना किसी विकर्षण के अनुभव किया जा सकता है। बहुत से लोग अपने स्मार्ट उपकरणों के साथ लगभग हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। उनके चेहरों पर दिन और रात स्क्रीन का प्रकाश जगमगाता रहता है और उनके कान ईयरफोन से बंद रहते हैं, जिससे वे आत्मा की शांत स्थिर आवाज को नहीं सुन पाते हैं। यदि हमारे पास कानों को खोलने का समय नहीं है, तो हम उसकी आवाज नहीं सुन सकते जिसने कहा था, शांत रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। प्रभु द्वारा प्रेरित आधुनिक तकनीकी का लाभ उठाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें इनका उपयोग समझदारी से करना चाहिए। सप्त के दिन का उपहार याद रखें। प्रभु भोज की आशीष प्राप्त करने को कभी नियमित कार्य के तौर पर नहीं लेना चाहिए या लापरवाह होकर प्रभु भोज में शामिल नहीं होना चाहिए। पूरे सप्ताह में केवल ये 70 मिनट होते हैं जब हम अपना चिंताओं और परेशानियों से मुक्त होते हैं और अपने जीवन में अधिक शांति, आनंद और सुख पाते हैं। प्रभु भोज में शामिल होना और अपने अनुबंधों को नवीन करना हमारे द्वारा प्रभु को एक प्रतीक है कि हम सच में उसे हमेशा याद करते हैं। उसका प्रायश्चित परमेश्वर की ओर से एक महिमा पूर्ण उपहार है। स्वर्गीय पिता के बच्चों की सेवा का सौभाग्य एक दूसरे को देखभाल करने के द्वारा उसके प्रिय पुत्र के उदाहरण का अनुसरण करने का एक मौका है। कुछ सेवा के मौके औपचारिक होते हैं, हमारे परिवार में, गिरजे की नियुक्तियों में और सामाजिक सेवा संगठनों में हमारी भागीदारी। गिरजे के सदस्यों, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को झिझकना नहीं चाहिए यदि वे किसी प्रशासनिक पद के लिए चुनाव में खड़ा होने चाहते हैं। जहां कहीं भी वे रहते हैं, अपने विचारों को बताना हमारे विद्यालयों में, हमारे शहरों में और हमारे देशों में आज जरूरी और महत्वपूर्ण है। जहाँ लोकतंत्र मौजूद है, उन ईमानदार पुरुषों और स्त्रियों को चुनना हमारा कर्तव्य है जो वास्तव में सेवा करना चाहते हैं। सेवा करने के बहुत से मौके अनौपचारिक होते हैं, बिना नियुक्ति के, और जब हम जीवन की यात्रा में मिलने वाले अन्य लोगों की मदद करते हैं। याद रखें, यीशु ने अच्छे सामरी का उदाहरण देकर वकील को शिक्षा दी थी कि हमें परमेश्वर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। सेवा एक अवसर देती है जिसके द्वारा हम मसीह के जीवन और सेवकाई को समझते हैं। वो सेवा करने आया था जैसा धर्मशास्त्र सिखाते हैं। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल हो जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की फिरौती के लिए अपने प्राण दें। पत्रस ने चार शब्दों में उद्धारकर्ता की नश्वर सेवकाई की शायद सर्वोत्तम व्याख्या दी है। जब उसने यीशु के संदर्भ में कहा था, वो अच्छा करता फिरा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सभी उपहारों में बेशकीमती हैं। यीशु ने कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। नफी ने हमारे उद्धारकर्ता के महत्व को व्यक्त किया था जब उसने कहा था, हम मसीह के विषय में बात करते हैं, हम मसीह में आनंदित होते हैं, हम मसीह का प्रचार करते हैं, हम मसीह की भविष्यवाणी करते हैं और हम अपनी भविष्यवाणियों के अनुसार लिखते हैं कि हमारी संतान जान सके कि वे अपने पापों की क्षमा के लिए किसके पास जाएं। हमें हर समय पर और हर स्थानों में मसीह को हमारे जीवनों के मध्य में रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि उसका नाम हमारे आराधना करने के स्थानों में दिखाई देता है। हम उसके नाम में बपतिस्मा लेते हैं और हम उसके नाम में पुष्टिकरण, नियुक्ति, इंटोग और विवाह में मुहर बंद होते हैं। हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं और उसके नाम को अपने ऊपर लेने की प्रतिज्ञा करते हैं और सच्चे मसीही बन जाते हैं। अंततः हम प्रभु भोज प्रार्थना में सदा उससे याद रखना चाहते हैं। जब हम कल ईस्टर रविवार के लिए तैयार होंगे तो हमें याद रखना चाहिए कि मसीह सर्वश्रेष्ठ है, वो धर्मी, न्यायी, हमारा विश्वासी सहायक, आशीषित मुक्तिदाता, अच्छा चरवाहा, वादा किया गया मसीहा, सच्चा मित्र और बहुत कुछ है। वो वास्तव में पिता की ओर से हमारे लिए अति मूल्यवान उपहार है। हमारी शिष्यता में हमारी कई मांगे, चिंताएं और कर्तव्य हैं। फिर भी कुछ गतिविधियां हमेशा गिरजा में हमारी सदस्यता पर आधारित होनी चाहिए। इसलिए प्रभु आदेश देता है, विश्वासी रहो, उस पद पर कायम रहो जिस पर मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। कमजोर की सेवा करो, उन हाथों को ऊपर उठाओ जो नीचे झुके हैं, कमजोर घुटनों को बल दो। ये गिरजा का कार्य है, यह शुद्ध धर्म है, ये सुसमाचार। इसकी वास्तविकता अवस्था में तब होता है जब हम किसी की सेवा करते हैं, ऊपर उठाते हैं और मजबूती देते हैं जो आत्मिक रूप और सांसारिक रूप से जरूरतमंद हैं। ऐसा करने के लिए हमें उनसे मुलाकात करने और उनकी मदद करने की आवश्यकता है ताकि स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह उसके प्रायश्चित के प्रति उनकी गवाहियों, उनके हृदयों में मजबूती से स्थापित हो जाएं। मैं आशा करता हूं कि हमें उसके पुनर्स्थापित गिरजे में अपनी सदस्यता को संजो कर रखने में प्रभु हमारी मदद करेगा और आशीष देगा। मैं प्रार्थना करता हूँ हम स्वर्गीय पिता के बच्चों के प्रति प्रेम से भर जाएंगे और उनकी जरूरतों को देखने योग्य होंगे और सुसमाचार के बारे में उनके प्रश्नों और चिंता को दूर करने के लिए स्पष्ट और दया के तरीकों से तैयार रहेंगे ताकि एक दूसरे के प्रति समझ और प्रशंसा बढ़ सके। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। जो हमें इस महासम्मेलन में सिखाया जाता है वो हमें प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं, जनरल अधिकारियों और मार्गदर्शक बहने जो गिरिजे की प्रधानाधिकारियों की प्रेरणा द्वारा प्राप्त होगा। प्रभु की आनंद और शांति प्रत्येक के साथ हो, यीशु मसीह के नाम में, यही मेरी प्रार्थना है।
We thank thee, O God, for our prophets. Recently, I went to church with my sweet mother at our old.
हाल ही में मैं अपनी प्यारी माँ के साथ गिरजा गया था। हमारे ओल्ड रॉक चैपल में उसी प्राथमिक कमरे के करीब आते ही थोड़ी थोड़ी आवाजों, जो सालों पहले जिसमें जाता था, मैं पीछे की ओर गया और ध्यान रखने के मार्गदर्शकों देखा। इस साल का विषय सिखा रहे थे, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। मैं मुस्कुराया क्योंकि मुझे स्मरण था कि धैर्य और प्यारे शिक्षक जो पीछे हमारे संगीत समय में तब अक्सर मुझे देखा करते थे, वे दर्शक बना छोटे बालक को बेंच पर आखिर में बैठे हुए जैसे कि कहते हो क्या ये सच में परमेश्वर की संतान है और जिसे यहाँ भेजा गया है। मैं हम सभी को आमंत्रित करता हूँ अपने हृदय को पवित्र आत्माओं के लिए खोले जो हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि परमेश्वर की संतान है। अध्यक्ष बॉयड के पेकर के शब्द सरल और अनमोल हैं, आप परमेश्वर की संतान हो, वह आपकी आत्मा का पिता है, आत्मिकता में आपका महान जन्म स्वर्ग के राजा के वंश में हुआ है। उस सच्चाई को अपने मन में पक्का कर लें और उसे साथ रखें, इसलिए आपके बहुत से वंशज आपके नश्वर वंश हैं। आप कौन सी दौड़ या लोगों को नेतृत्व करते हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आत्मा वंशावली को अकेली रेखा पर ले जा सकती है, आप परमेश्वर की संतान हो। जब आप अपने हमारे पिता को देखते हैं, ब्रिगम यंग का वर्णन, आप एक जन को देखेंगे कि जिसके साथ लंबे समय में से परिचित है और वह आपको अपनी बाहों में ले लेगा और आप उसे गले से लगाएंगे और चूमेंगे। एक महान युद्ध पवित्र पहचान है, मूसा के अपनी पवित्र विरासत को प्रभु के साथ आमने सामने बातें करके जाना था। उसी अनुभव के साथ शैतान लालच देने आया, कोमलता के साथ गलत इरादे से मूसा की पहचान को बिगाड़ने कहा, मूसा मनुष्य का पुत्र है, मेरी इबादत और मूसा के संतान को जैसे, और कहा तू कौन है, देखो मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यह महान युद्ध रोष उग्रता से पवित्र पहचान पर हुआ, जैसे संतान घातक उद्देश्य का प्रचार कर हमारे भरोसे में और परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के ज्ञान को नष्ट करने आता है। धन्यवाद हो, हम शुरू से ही अपनी सच्ची पहचान की साफ समझदारी से आशीषित हैं और परमेश्वर ने कहा चलो हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार अपनी ही समानता में बनाएं, और जीवित भविष्यवक्ता घोषित करते हैं कि हम प्रत्येक स्वर्गीय माता पिता के आत्मिक प्रिय पुत्र और पुत्री और उसकी समान प्रत्येक के परमेश्वर के तुल्य बनाने की संभावित योग्यता है। इस सच्चाई को जानने के बाद निश्चित रूप से हमें परीक्षाओं, परेशानियों, हर प्रकार की पीड़ा से उभरने में सहायता मिलेगी। जब पूछा जाएगा हम कैसे उनका जो के साथ संघर्ष कर रहे हैं सहायता कर सकते हैं, एक प्रभु के प्रेरित निर्देश देते हैं, उनकी पहचान और उद्देश्य सिखाओ। सबसे शक्तिशाली ज्ञान में प्रभावित हुआ, यह शक्तिशाली सच मेरी मित्र जैन के लिए जीवन बदलाव का था, जिसकी युवावस्था की गंभीर दुर्घटना का कारण थी, जबकि उसके शरीर का गंभीर घाव थे। वह अपने बहुत पीड़ा महसूस कर रही थी क्योंकि दूसरी चालक की मौत हो गई थी, किसी ने अपनी माँ को खोया और वह मेरी गलती थी। वो कहती जैन जिसने कुछ दिन पहले होकर और दोहराया था, हमें हमारे स्वर्ग के पिता की बेटियां हैं जो हमसे प्रेम करता है। अब प्रश्न है वह कैसे मुझे प्रेम कर सकता है, शरीर की पीड़ा चली जाएगी, वह कहती है, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं कभी भी भावुक और आत्मिक जख्मों से चंगी हो पाऊंगी। जीने के लिए जैन ने अपनी भावनाओं को गहराई से छुपा लिया और दूर और सुन हो रही थी। एक साल बाद जब वह आखिरकार दुर्घटना के बाद बात करने योग्य हुई, एक प्रेरणा भर सलाहकार ने उसे वाक्य लिखने को आमंत्रित किया, मैं परमेश्वर की संतान हूँ और उसे 10 बार रोज बोलो। शब्दों को लिखा आसान था, वह क्या याद करती थी, लेकिन बोल ना सकी। वह सच्चा लगता था और मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रही थी कि परमेश्वर अपनी संतान के रूप में चाहेगा। मैं घबराने और रोने लगी। कई महीनों बाद जैसे जेन ने आखिरकार हर दिन का कार्य पूरा किया, मैंने अपनी पूरी आत्मा लगा दी। वह कहती है परमेश्वर को आग्रह करती है, फिर मैं शब्दों पर विश्वास करने लगी, इस भरोसे से उद्धारकर्ता को उसकी आत्मा के जख्म को भरने की अनुमति दी। मार्मन की बुक पुस्तक राहत और उसके प्रायश्चित में प्रोत्साहना लाई। मसीह मेरे दर्द को, मेरे दुख, मेरे दोष और महसूस करता है। जैन समापन करती है, मैंने परमेश्वर के शुद्ध प्रेम को महसूस किया है और इतना शक्तिशाली अनुभव कभी नहीं किया था। जानते हुए मैं परमेश्वर की संतान हूँ, सबसे शक्तिशाली ज्ञान से मैं प्रभावित हुई। परमेश्वर को जानने की खोज करें जो हमारा पिता है। हम सब कैसे समझदारी की सामर्थ्य और हमारी पवित्र पहचान का अनुभव करा सकते हैं? इसकी शुरुआत परमेश्वर हमारे पिता को खोजने से होती है। अध्यक्ष रसल एम नेल्सन गवाही देते हैं कि कोई परमेश्वर की संतान उसके और उसकी प्रिय पुत्र के बारे में और अधिक जानने के लिए खोजते हैं तो कुछ शक्तिशाली होता है। उद्धारकर्ता के बारे में सीखना, अनुसरण करना हमारी सहायता पिता को जानने में करता है। वह उसके तत्वों की छाप है। यीशु सिखाता है, पुत्र अपने आप से नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। मसीह का हर शब्द परमेश्वर का सच्चा व्यवहार प्रकट करता है। और हमारा रिश्ता उसके साथ एल्डर जेफरी आर हॉलैंड ने सिखाया था, हर छिद्र में रक्त निकलता है और होठों पर एक ही दुखी वेदना के साथ मसीह ने उसको खोजा जिसको वह हमेशा से खोजता आया था। उसका पिता अब्बा वह रोता है पिता, जैसे यीशु मसीह गेत्सेमनी में अपने पिता के आग्रह करता है, वैसे यशो जोसेफ स्मिथ ने 1820 में परमेश्वर से पवित्र उपवन में प्रार्थना पूर्वक मांगा था, पढ़ने के पश्चात, यदि तुम में से किसी की बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। जोसेफ प्रार्थना करते चला गया, मैं घुटनों पर हुआ, वह लिखता है, और परमेश्वर को मेरे हृदय की अभिलाषाओं को भेंट लेने लगा। मैंने ठीक मेरे सिर के ऊपर रोशनी का एक खंभा देखा। मैंने दो ईश्वर देखे जिनकी चमक और महिमा सारे वर्णन में अपार थी, मेरे से ऊपर हवा में खड़े थे। उनमें से एक ने मुझे बोला, मुझे नाम से बुलाया, दूसरी ओर संकेत करते हुए, ये मेरे प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जैसे हम उद्धारकर्ता के उदाहरण का अनुसरण करते हैं, जैसे भविष्यवक्ता जोसेफ ने लगन से परमेश्वर को खोजा था, वह वास्तविकता में समझ पाएंगे कि जैसे जैन ने किया था कि हमारे पिता हमारे नाम से जानता है और हम उसकी संतान है। युवा माताएं जो अक्सर व्याकुल महसूस करती हैं, पानी के भीतर एक पाप रहित वंश को बढ़ाने के प्रयास करती हैं। कभी भी परमेश्वर की योजना में अपने आप को केंद्रित भूमिका से कम ना समझना। तनाव भरे पलों में शायद जब आप छोटे बच्चे के पीछे दौड़ती हैं और किचन से आती जलने की खुशबू आती बताती है कि आपका तैयार किया क्या प्यारा सा रात को भोजन, अब आप जाने कि परमेश्वर अपनी अति बुरे दिनों को शुद्ध करता है। भयभीत ना हो, मैं तुम्हारा साथ हूँ, वह शांतिपूर्वक आश्वासन देता है। जब बहन जोएडी जोन्स की आशा को पूरा करने में आपका सम्मान करता हूँ और जो कहती है हमारे बच्चों के पवित्र पहचान को समझना, मैं आप सबको परमेश्वर और उसके प्रिय पुत्र खोज के लिए आमंत्रित करता हूँ। अध्यक्ष नेल्सन कहते हैं कि कहीं भी इस सच को बहुत सफाई और शक्तिशाली तरीके से मॉर्मन की पुस्तक के सिवाय और नहीं सिखाया जाता। इसके पन्ने खोलो और सीखे कि परमेश्वर हमारी सलामती और आनंद के लिए सब कुछ करता है, क्योंकि वह दयावान और महिमा पूर्ण है, क्रोधित नहीं होता। लंबे समय की पीड़ा सहना और अच्छाई से पूर्ण रहना उसके लिए एक समान है। जब आपको ठेस लगे, गम हो, भयभीत, तनाव, दुख, भूख या आशाहीन जीवन की परेशानियों से हताश, मॉर्मन की पुस्तक खोले और आप जानेंगे परमेश्वर ने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं छोड़ेगा। वह ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करना उसका स्वभाव नहीं है। अपने पिता को जानना हर बात को बदलता है, विशेषकर हमारा हृदय, जैसे हम उसकी सौम्य आत्मा हमारी सच्ची पहचान की पुष्टि करती है और उसके दृष्टि में लायक है। परमेश्वर हमारे साथ अनुबंध के पथ पर साथ चलता है और जो हमारे पर प्रार्थनापूर्वक अनुग्रह द्वारा उसे खोजते धार्मिक तलाश और आज्ञाकारिता का प्रयास करता है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, दुख से मैं हमारे साथ रोता है, हमारी अयोग्यता धैर्य से ताड़ना देता और वह आनंदित होता है, उसे जानने के लिए हमारे पाप त्याग देते हैं। मैं उसकी उपासना करता हूँ, पिताओं का पिता है, साथियों का साथी, कृतज्ञता से मैं गवाही देता हूँ कि परमेश्वर हमारे पिता का संपूर्णता की गवाही, गुणों और उसके स्वभाव की श्रेष्ठता को जानना आया हूँ कि मैं हर कोई नेक जन्म अधिकार समझते पोषित है, जैसे एक परमेश्वर की संतान उसको जानेगा कि यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
Now, upon the first day of the week, very early in the morning, they came into the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulchre, and they entered in and found not the body of the Lord Jesus. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead? He is not here, but is risen. Tomorrow, the Easter Sabbath, we will remember in a special way what Jesus Christ has done for us. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Eventually, we will be resurrected as he was, to live forever. Through the miracle of the sacred atonement of Jesus Christ, we can also receive the gift of forgiveness of our sins and misdeeds if we accept the opportunity and responsibility of repentance. And by receiving necessary ordinances, keeping covenants, and obeying commandments, we can gain eternal life and exaltation. Today, I want to focus on forgiveness, an essential and precious gift offered to
us from our Savior. आज मैं हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह द्वारा दिए गए जरूरी और कीमती उपहार क्षमा पर बोलना चाहता हूँ। 1982 दिसंबर की एक रात को मेरी पत्नी टेरी और पैचोला आइडाहो में एक फोन करते हुए कॉल से जाग गए। जब मैंने फोन उठाया तो मुझे रोना सुनाई दिया। अंततः मेरी बहन ने रोते हुए मुझे बताया, टॉमी का निधन हो गया है। बीस वर्ष के युवा शराबी ड्राइवर ने 135 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए कलोराडो के डेनवर शहर में लाल बत्ती पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मेरे सबसे छोटे भाई टॉमी की गाड़ी को बुरी तरह टकरा गया था। मेरा भाई और उसकी पत्नी तुरंत ही मारे गए। वे क्रिसमस की पार्टी के बाद घर को अपनी छोटी बेटी के पास लौट रहे थे। मेरी पत्नी और मैं तुरंत डेनवर के लिए उड़ान भरी और हम मुर्दा घर पहुंचे। हम अपने माता पिता और बहनों भाई बहनों के साथ इकट्ठे थे और अपने प्रिय टॉमी और जॉन की मौत का शोक मनाया। हमने उन्हें एक निर्मम आपराधिक कार्य के कारण खो दिया था। हमारे हृदय टूट चुके थे और उस युवा अपराधी के विरुद्ध मैं अपने भीतर अत्यधिक गुस्सा महसूस कर रहा था। टॉमी ने संयुक्त राज्य के न्याय विभाग में वकील के रूप में कार्य कर रहा था। वह आने वाले वर्षों में अमरीकी आदिवासी भूमि और प्राकृतिक स्रोतों की सुरक्षा के प्रति प्रभावशील वकील के रूप में उभर रहा था। कुछ समय बीत जाने के बाद उस युवा को सजा देने के लिए न्यायालय की कार्रवाई शुरू हुई। उसे गैर कानूनी रूप से गाड़ी चलाते हुए हत्या करने का दोषी पाया गया। पीड़ा और दुख में मेरे माता पिता और उनकी बड़ी बहन इस कार्रवाई में उपस्थित थे। शराबी ड्राइवर के माता पिता भी वहां थे और यह कार्रवाई समाप्त होने के बाद बेंच में बैठे रोने लगे। मेरे माता पिता और बहन उनके निकट बैठ गए जब वे अपने स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ क्षण के बाद मेरे माता पिता और बहन खड़े हुए और ड्राइवर के माता पिता के पास गए और उन्हें दिलासा और क्षमा के शब्द कहे। पुरुषों ने हाथ मिलाया और महिलाओं ने हाथ थामे। उस समय सबों ने गहरी सांस की पीड़ा सही थी और आंसुओं से पता चल रहा था दोनों परिवार अत्यधिक दुखी थे। माँ, पिताजी और केटी ने शक्ति साहस हमारे परिवार को दिखाया कि क्षमा क्या होती है. क्षमा करने के उन क्षणों के कारण मेरा स्वयं का हृदय कोमल हुआ, चंगाई का अवसर मिला. समय बीतने पर मैंने सीखा कि क्षमा करने वाला हृदय किस प्रकार पाया जाता है. शांति के राजकुमार की मदद के कारण मेरा दुख भरा बोझ समाप्त हो गया था. मेरा हृदय हमेशा टॉमी और योन को याद करेगा, लेकिन क्षमा के कारण अब मैं उन्हें मुक्त आनंद से याद करूंगा और मैं जानता हूं कि एक बार फिर परिवार के रूप में मिलेंगे. हम यह नहीं कह रहा कि हमें गैर कानूनी व्यवहार को अनदोखी करनी चाहिए. हम अच्छी तरह जानते हैं उन लोगों को उनके अपराधी कामों और गलत कामों के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए. फिर भी हम जानते हैं कि परमेश्वर के बेटे और बेटियों के रूप में जो मसीह यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करते हैं, हमें क्षमा करना चाहिए. बेशक लगता हो उनकी क्षमा की योग्य नहीं है. उद्धारकर्ता ने सिखाया था, इसलिए तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा. यह सब अकल्पनीय रूप से शांति और उद्धारकर्ता के साथ भागीदार होना, जब हम मुक्त होकर उन्हें क्षमा करना सीखते हैं जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किया है. यह भागीदारी उद्धारकर्ता की शक्ति को हमारे जीवनों में अचूक और यादगार रूप से लाती है. प्रेरित पौलुस ने सलाह दी थी, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की तरह बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो. एक दूसरे की सहलो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो. स्वयं प्रभु ने कहा था, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि वह जो अपने भाई को किसी उल्लंघनों के लिए क्षमा नहीं करता प्रभु के सम्मुख दंडित है, क्योंकि उसमें महान पाप बना रहता है. मैं प्रभु जिसे मैं चाहूंगा क्षमा करूंगा, लेकिन तुमसे ये अपेक्षित है तुम सबको क्षमा करो. हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता की शिक्षाएं स्पष्ट हैं. पापी को हमेशा दूसरों को क्षमा करना चाहिए यदि वह क्षमा प्राप्त करने की आशा करता या करती है. भाइयों और बहनों, क्या हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है? क्या हम असंतोष और गुस्से की भावनाओं मन से लगाए रहते हैं? हमें जायज लगती है? क्या हम अपने घमंड के कारण दूसरों को क्षमा नहीं करते? मैं हम सबों को पूर्ण रूप से क्षमा करने का निमंत्रण देता हूं, ताकि भीतरी घाव भरे जा सके. और बेशक क्षमा आज न मिले, जाने कि जब हम किसी इसकी इच्छा करते हैं और इसकी ओर बढ़ते हैं तो यह मिलती है, जैसे यह अंततः मुझे मेरे भाई की मृत्यु के बाद मिली थी. कृपया यह भी याद रखें कि क्षमा के आवश्यक तत्व में क्षमा करना भी शामिल है. देखो, वह जिसने पापों को पश्चाताप किया है उसे क्षमा कर दिया गया है, और मैं प्रभु उसके पापों को बिल्कुल याद नहीं रखता. आज के दिन मैं हम सबों से यीशु मसीह के उदाहरण को याद करने और इसका पालन करने की याचना करता हूँ. गुलगत्ता की सलीब पर अपने कष्ट में उसने इन शब्दों को कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं. क्षमा करने की आत्मा होने और इस पर कार्य करने के द्वारा मेरे माता पिता और बड़ी बहन की तरह हम उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा को महसूस करते हैं. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ. अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे. मैं गवाही देता हूं यह शांति हमारे जीवन में आएगी जब हम यीशु मसीह की शिक्षाओं का पालन करते हैं और उसके उदाहरण का अनुसरण करते हैं दूसरों के क्षमा करते हुए. जब हम क्षमा करते हैं तो मैं वादा करता हूं उद्धारकर्ता हमें मजबूती देगा और उसकी शांति और आनंद हमारे जीवनों में आएगा. कब्र खाली है, मसीह जीवित है. मैं उसे जानता हूं, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उसके अनुग्रह का आभारी हूं जो कि सामर्थ देने वाली शक्ति है. यह सबों को चंगा करने की योग्य है. यीशु के पवित्र नाम में आमीन.
The congregation will now join the choir in singing Press Forward Saints. After the singing, we will hear from Elder Gary.
Press Forward Saint गाएगी. उसके बाद हम एल्डर 12 पेरितों के परिषद के गैरी ई स्टेवेंसन के प्रेरितों को सुनेंगे. उसके बाद एल्डर लैन जी रॉबिन्सन सुनेंगे. एल्डर रॉबिन्सन के बाद गायक मंडली टेल मी द स्टोरीज ऑफ जीसस गाएंगे.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
मैं उत्साह से प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आज इस स्वर्गीय अवसर पर हम सभी के साथ होगी.
हम सब ने एकत्रित होकर इस युग के 17वें भविष्यवक्ता का महासभा में समर्थन होते हुए देखा है। जब मैंने आज के संशोधन के विषय के लिए प्रभु के मैं मार्गदर्शन मांगा, तो मेरा ध्यान नई नियुक्त प्रथम अध्यक्षता की हाल में हुई बातचीत की ओर गया। इस बातचीत में एक सलाहकार ने एक प्रकार के शब्द कहे थे, मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि गिरजे के सदस्य हमारे नए भविष्यवक्ता अध्यक्ष रसल एम नेल्सन की नियुक्ता के इस घटना के महत्व और महासभा की विशेषता और पवित्रता को समझ सकते हैं जो जनरल सम्मेलन के दौरान होगी। उन्होंने आगे कहा, 10 साल हो गए हैं और बहुत को विशेषकर गिरजे के युवाओं को याद नहीं है या ऐसा पहले अनुभव नहीं किया होगा। इस बातचीत में मुझे अपने अनुभवों पर सोचने के लिए मजबूर किया। पहले भविष्यवक्ता जो मुझे याद हैं, अध्यक्ष डेविड ओ मेके, मैं 14 वर्ष का था जब उनका निधन हुआ था। उनके निधन की अनुभूतियों को और अपनी माँ की आंखों के मैं आंसुओं को मैं याद कर सकता हूँ। मुझे याद है कि किस प्रकार ये शब्द कृपया अध्यक्ष डेविड ओ मके को आशीषित करना संभावित रूप से मेरे होंठों से प्रार्थना में निकले थे। मुझे पता नहीं कि मैंने यह क्यों बोला रहा था। उनके निधन के बाद भी वे शब्द स्वतः निकलते थे। मैं अभिचित था कि मेरा मन और हृदय में वही अनुभूति और आस्था उनके बाद आने वाले भविष्यवक्ताओं के लिए होगी। लेकिन उन माता पिता के समान जो उनके प्रत्येक बच्चों से प्रेम करते हैं, मैंने वही प्रेम संबंध और गवाही अध्यक्ष जोसेफ फील्डिंग स्मिथ के लिए प्राप्त की थी, जो अध्यक्ष मेके के बाद अध्यक्ष बने थे, और उनके बाद प्रत्येक भविष्यवक्ता के लिए हॉलेट बी ली, स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल, एजरा टाफट बेंसन, हार्वर्ड डब्ल्यू हंटर, गॉर्डन बी हिंकली, थॉमस एस मॉनसन और आज अध्यक्ष रसल एम नेल्सन। मैं पूरी तरह से प्रत्येक भविष्यवक्ता का हाथ उठाकर हृदय से समर्थन करता हूँ। जिस तरह प्रत्येक प्रिय भविष्यवक्ता के निधन के बाद दुख और खोने की अनुभूति होती है, संभाविक है, परंतु हमें खुशी और आशा की आने वाली आशाओं से हमारे दुख शांत हो जाते हैं, क्योंकि हम पुनः स्थापन के महान आशीषों में से एक का अनुभव करते हैं, पृथ्वी पर एक जीवित भविष्यवक्ता का आह्वान और उसे बनाए रखना। इस कारण मैं गिरजे में 90 दिनों के लिए हुए दिव्य प्राकृतिक के बारे में बोलूंगा। मैं इस 4 भागों को बांटूंगा। पहला हमारे भविष्यवक्ता का निधन और प्रथम अध्यक्ष का विलय, दूसरा नई प्रथम अध्यक्षता के पुनर्गठन का प्रतीक्षा की अवधि, तीसरा नए भविष्यवक्ता का, चौथा महासभा में नए भविष्यवक्ता और प्रथम अध्यक्षता का समर्थन। 2 जनवरी 2018 को हमारे प्रिय भविष्यवक्ता थॉमस एम नेल्स मॉनसन इस संसार से चल गए थे। उनके लिए हमारे दिलों में स्थान हमेशा रहेगा। अध्यक्ष मॉनसन के गुजर जाने पर अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग द्वारा व्यक्त की गई संवेदना पूरी तरह से हमारी अनुभूतियों को प्रदर्शित करती है। उधारकर्ता के समान उनके जीवन की विशेषता, गरीब, बीमार, यहाँ तक कि विश्व की सभी लोगों के तक पहुँचने की उनकी व्यक्तिगत चिंता है। जैसा आकाश में तारा डूबता तो दूसरे तारे का उदय होता है, उसे मृत्यु और मृत्यु से जीवन पैदा होता है। प्रभु का कार्य अंतहीन है। यहाँ तक कि जब प्रभावशाली मार्गदर्शक की मृत्यु होती है, तो गिरजा एक क्षण के लिए भी बिना नेतृत्व के नहीं होता है। परमेश्वर की व्यवस्था और धन्यवाद जिसने अपने राज्य को निरंतर स्थापित प्रदान किया है, जैसे कि ऐसा पहले भी हो चुका है। इस युग से पहले लोगों ने संपूर्ण भाव सम्मान पूर्वक भविष्यवक्ता को विदा किया, अपने आंसुओं को पोछा और भविष्य की ओर नए नजरें उठाए। भविष्यवक्ता के निधन और प्रथम अध्यक्षता का पुनर्गठन के बीच की अवधि को प्रत्येक प्रेरित व्यवस्था कहा जाता है। इस अवधि के दौरान 12 की परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में मिलकर गिरजे के सेवकाई की कुंजियों के धारण करती हैं। अध्यक्ष जोसेफ एफ फील्डिंग स्मिथ ने सिखाया, गिरजे का एक प्रधान हमेशा ही बना रहता है, और यदि गिरजे का अध्यक्षता का निधन या अन्य कारण से विलय हो जाता है, तो गिरजे के अगले प्रधान 12 प्रेरित होते हैं, जब तक अध्यक्षता का पुनर्गठन नहीं हो जाता। अभी हाल ही में यह व्यवस्था अवधि 2 जनवरी से अध्यक्ष मॉनसन के निधन हुआ और 12 दिन बाद रविवार 14 जनवरी को समाप्त हो गई। सप्त की सुबह 12 प्रेरितों की परिषद सॉल्ट लेक मंदिर के ऊपरी कक्ष में उपवास और प्रार्थना की आत्मा में अध्यक्ष रसल एम नेल्सन 12 प्रेरितों की परिषद के वरिष्ठ प्रेरित और अध्यक्ष के निर्देशन में मिले थे। इस पावन और यादगार सभा में सुव्यवस्थित रूप से एकता और समर्पण सर्वमति से भाइयों ने 13 कुर्सियों के अर्धवृत्त और वरिष्ठता में से बैठ गए थे और प्रथम अध्यक्षता के संगठन के बनाए रखने के लिए पहले उन्होंने हाथ उठाए, पहले प्रथम अध्यक्षता के संगठन का हाथ उठाकर समर्थन किया और फिर अध्यक्ष रसल एम मैरिसन नेल्सन को अंतिम दिनों के यीशु मसीहा के गिरजे के अध्यक्ष के रूप में समर्थन किया। इस समर्थन के बाद 12 की परिषद घेरे में एकत्रित हुए और हाथों को अध्यक्ष नेल्सन के सर पर रखकर उन्हें नियुक्त किया और प्रतिकरण किया। सबसे वरिष्ठ प्रेरित ने इसे संपन्न किया था। अध्यक्ष नेल्सन ने फिर अपने सलाहकारों अध्यक्ष डिलन हैरिस ओक्स, अध्यक्ष हेनरी बिनियो एयरिंग, अध्यक्ष ओक्स को 12 प्रेरितों की परिषद के अध्यक्ष और अध्यक्ष मेलविन रसल बिलार्ड को 12 परिषदों की परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष चुना। उसी प्रकार समर्थन मत के बाद इन भाइयों को अपने अपने पदों पर अध्यक्ष नेल्सन द्वारा प्रतिकरण किया गया था। यह एक अत्यंत पवित्र अनुभव था जिसमें आत्मा का परिवाह था। मैं आपको अपनी असीम गवाही देता हूं कि प्रभु की इच्छा, जिसके लिए हम उत्साह से प्रार्थना करते हैं, प्रभावशाली रूप से उस दिन की कार्रवाइयों और घटनाओं में प्रकट हुआ था। अध्यक्ष नेल्सन की नियुक्ति और प्रथम अध्यक्ष के पुनर्गठन के साथ प्रेरित व्यवस्था समाप्त हो गई थी और नव गठित प्रथम अध्यक्ष ने बिना एक सेकंड की बाधा के पृथ्वी पर प्रभु के राज्य का कार्य करना आरंभ कर दिया। यह सुबह एक दिव्य प्रक्रिया धर्मशास्त्र अधिदेश सिद्धांत और अनुबंध के में लिखित के अनुसार संपन्न हुई, क्योंकि सब कार्य उचित तरीके से किए जाने चाहिए और गिरजे में आम सहमति द्वारा, विश्वास की प्रार्थना द्वारा और 3 याजक चुने गए, गिरजे के भरोसे विश्वास और प्रार्थना द्वारा समर्थित किए गए। गिरजों की अध्यक्षता की परिषद गठित करने के लिए एल्डर डेविड बी हेट ने ऐसी ही एक पिछली घटना का जिक्र किया था जिसमें हमने आज भाग लिया है। हम बहुत ही पावन अवसर के गवाह और भागीदार हैं एक महासभा को जो स्वर्गीय कार्यवाही का पूरा करने के लिए, जैसे अतीत के समान विश्व भर के संतों द्वारा बहुत उपवास और प्रार्थना की गई ताकि वे प्रभु की आत्मा के प्रवाह का ग्रहण कर सके, जो आज सुबह इस अवसर तक अत्यधिक स्पष्ट है। पवित्र महासभा, जैसे कि नाम से पता चलता है, पवित्र, शांत और श्रद्धा युक्त अवसर है जब संत प्रथम अध्यक्षता के निर्देशकों मैं एकत्रित होते हैं। भाइयों और बहनों, हम आनंद मना सकते हैं, होसाना भी कह सकते हैं कि प्रभु का प्रवक्ता, परमेश्वर की का भविष्यवक्ता अपने स्थान पर और प्रभु और की प्रभु प्रसन्न है कि उनका कार्य उसी प्रकार किया जा रहा है जैसे उनके दिव्य रूप से बताया है। अध्यक्ष, यह दैवीय नियुक्त प्रक्रिया एक अन्य दैवीय नियुक्त भविष्यवक्ता की ओर जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे अध्यक्ष मॉनसन इस पृथ्वी पर रहने वाले अति शानदार निवासियों में से एक थे, वैसे ही अध्यक्ष नेल्सन हैं। उन्होंने प्रभु द्वारा गंभीरता से तैयार और विशेष रूप से सिखाया गया है इस समय में हमारा नेतृत्व किया करने के लिए, यह एक महान आशीष है। अध्यक्ष रसल एम नेल्सन को हमारे प्रिय और निष्ठावान भविष्यवक्त रूप के बारे में पाना गिरजे के 17वें अध्यक्ष के इस अंतिम युग में। अध्यक्ष नेल्सन सच में असाधारण व्यक्ति हैं। 12 की परिषद में मैंने परिषद के अध्यक्ष के तौर पर मुझे उनके साथ लगभग 2.5 वर्ष सेवा करने का सौभाग्य मिला है। मैंने उनके साथ यात्रा किया है और उनकी ऊर्जा से मुझे आश्चर्य होता है, जैसे कि हर एक को अपनी गति से आगे बढ़ने के लिए जल्द ही चलना चाहिए ताकि उनके साथ कदम मिला कर सके। उनके जीवन काल में वह कुल 133 देशों में जा चुके हैं। उनकी पहुंच सबसे अधिक युवा और वृद्ध, यह सभी को जानते हैं कि विशेष रूप से नामों का याद रखने के लिए प्रतिभाशाली हैं। वे सबको उन्हें जानते हैं और महसूस करते हैं, वे सब उनके मृत प्रिय हैं और ऐसा ही हम में से प्रत्येक के साथ है और उनके सच्चे प्यार और चिंता सबके लिए है। अध्यक्ष नेल्सन के साथ मेरा पहला संबंध गिरजे संबंधी भूमिकाओं में रहा, उनका जनरल अधिकारी नियुक्त होने से पहले, मगर मैं अध्यक्ष नेल्सन के व्यवस्था के जीवन से भी परिचित हूँ। जैसा आप को कभी जानते होंगे, अध्यक्ष नेल्सन विश्व विख्यात हार्ट सर्जन है और उनकी चिकित्सीय पेशा में हार्टलिंग मशीन को विकसित करने के दुवाले में थे। 1951 में वह उस अनुसंधान टीम के साथ थे जिन्होंने ओपन हार्ट मशीन, ओपन हार्ट ऑपरेशन, हार्ट लंग बाईपास को अपने किया था। इसके अलावा अध्यक्ष नेल्सन ने अध्यक्ष स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल के दिल का ऑपरेशन किया था जब वे विश्वक्ता थे। दिलचस्प रूप से जब वह 34 वर्ष पहले अध्यक्ष नेल्सन के बारह की नियुक्त ने दिलों को मजबूत देने और सुधार रखने वाले चिकित्सा कार्यालय को समाप्त किया, उनके अनगिनत हजारों लाखों के हृदय को मजबूत और सुधार करने और गिरजे संबंधी सेवा आरंभ किए जाने, उनके शब्दों और ज्ञान के कामों, सेवा और प्रेम द्वारा उठाए गए ठीक हुए। जब मैं प्रतिदिन के कार्य में मसीह मान हृदय की कल्पना करता हूं, तो मैं अध्यक्ष नेल्सन को देखता हूं। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिला हूं जो उनके गुणों की तुलना में एक बेहतर उदाहरण हो। यह मेरे लिए उल्लेखनीय संरक्षक रहा है और अध्यक्ष नेल्सन ने मसीह जैसे दिल वाले भविष्यवक्ता को प्रत्येक रूप से देखा। अक्टूबर 2015 में भारत के मेरी नियुक्ति के थोड़े हफ्ते में मुझे अध्यक्ष नेल्सन की अतीत जीवन की एक झलक देखने का अवसर मिला। मुझे एक समारोह में निमंत्रण मिला जिसमें उन्होंने कार्डियोथोरेसिस सर्जरी पुरस्कार मिला था। जब मैं उस स्थान में गया तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अध्यक्ष नेल्सन के कई वर्ष पहले मेडिकल डॉक्टर के और सर्जन के रूप में किए गए कार्य को सम्मान और पहचान देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में पेशेवर लोग वहां उपस्थित थे। उस शाम को बहुत से पेशेवर लोग खड़े हुए और उन्होंने अध्यक्ष नेल्सन के उत्कृष्ट योगदान के लिए उसने अपने सम्मान और प्रशंसा को प्रकट किया जो उन्होंने अपनी विशिष्ट चिकित्सा क्षेत्र में दिया था। उनके विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन करने में प्रत्येक प्रस्तुतकर्ता प्रभावशाली था। मैं एक व्यक्ति से एक बातचीत में बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ जब मैं बगल में बैठा जो मेरे बगल में बैठा था वह नहीं जानता था कि मैं कौन था, लेकिन वह अध्यक्ष नेल्सन को जैसा डॉक्टर नेल्सन 1955 में एक मेडिकल स्कूल में थोरेसिक सर्जरी रेजिडेंसी कार्यक्रम के निर्देशक के रूप में जानता था। यह व्यक्ति अध्यक्ष नेल्सन का पूर्व छात्र था, उसकी कई यादों का बांटा था। सबसे अधिक दिलचस्प व्याख्या अध्यक्ष नेल्सन की शिक्षण शैली की थी जिसके कारण उसने बताया वह प्रख्यात हुए थे। उनसे बताया कि हार्ट सर्जरी रेजिडेंट डॉक्टरों की अधिकतर शिक्षा ऑपरेशन कक्ष में हुई थी जहां रेजिडेंट डॉक्टर संपूर्ण विभागीय निरीक्षण में ऑपरेशन होते देखते और कहते थे एक प्रयोगशाला के रूप में। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कक्ष का वातावरण नियत विभागीय सर्जरी सर्जन के अतिरिक्त अस्त व्यस्त प्रतिस्पर्धी दबाव भरा और स्वार्थी होता था। इस व्यक्ति ने उसे इस कठिन वातावरण बताया था जब कभी कभी अपमानजनक भी होता था। फलस्वरूप निवासी सर्जनों ने महसूस किया कि उनकी नौकरी अक्सर खतरे में पाई जाती थी। फिर उन्होंने अध्यक्ष नेल्सन का ऑपरेशन कक्ष में पाए जाने वाले बेजोड़ वातावरण के बारे में बताया। यह शांतिपूर्ण, स्थिर और सम्मानजनक होता था। रेजिडेंट डॉक्टर के साथ गहरे सम्मान और व्यवहार किया जाता था। हालांकि प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करने बाद डॉक्टर नेल्सन प्रत्येक रेजिडेंट डॉक्टर के उच्चतम स्तर की आशा करते थे। इस व्यक्ति ने आगे बताया कि कैसे सबसे अच्छे रोगी परिणाम और उत्तम सर्जन डॉक्टर नेल्सन के ऑपरेशन कक्ष से निकल कर आए थे। इस पर मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होता। यह मैंने पहले अनुभव किया हो, व्यक्तिगत रूप से देखा है और बारह की परिषद के द्वारा सचमुच मैं आशीषित हुआ हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं एक तरह से उनके रेजिडेंट डॉक्टर के में हूँ। अध्यक्ष नेल्सन के पास दूसरों को सिखाने और सकारात्मक संपूर्ण सम्मान पूर्व उठाने को बेजोड़ तरीका है। वह मसीहमान हृदय के प्रतीक और हम सबों के लिए उदाहरण है। उनके हम सिखाते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह हमारे व्यवहार और हृदय यीशु मसीह के समुचर के अनुसार होता है। अब हमारे पास भविष्यवक्ता के बनाए रखने के लिए विशेष आशीष। अध्यक्ष रेल्सन एम नेल्सन अपने जीवन काल में उन्होंने छात्र, पिता, प्रोफेसर, प्रति, डॉक्टर, लीडर, दादा और प्रति के रूप में अपनी भूमिकाएं अध्ययन किया। उन्होंने और ऐसा करना जारी है। इस मसीहा मान भविष्यवक्ता के हृदय के साथ यीशु मसीहा के नाम में से मैं कहता हूँ आमीन। In the name of Jesus Christ, amen.
Mistakes are a fact of life. Learning to skillfully play the piano is essentially
galtiyan jeevan ki sachchai hai. Kushalta se piano bajana seekhna bina hazaron galtiyon, shayad lakhon galtiyon ke bina seekhana bilkul asambhav hai. Videshi bhasha seekhne ke liye vyakti hazaron, shayad lakhon galtiyan karta hai. Yahan tak ki vishwa ke mahantam khiladi bhi galtiyan karte rehte hain. Safalta kaha jata hai asafalta ka na hona nahi, balki bar bar asafal hone par bhi usaah mein koi kami na hona. Bijli ke bulb ki apni khoj ke sath Thomas Edison ne kaha tha, main 1000 bar asafal nahi hua apitu bijli ke bulb ki khoj 1000 charno mein ki gayi thi. C.S. Lewis ne asafaltaon ko kamyabi ke path ke margdarshan kaha tha. Aashapurvak pratyek galti jo hum karte hain badhaon aur panchinon mein badle hue gyan ka paath sikhati hai. Nafi ke majboot vishwas ne use har bar safar asafal hone antant pitar ki pattiyan paane mein madad ki thi. Musa ne bhi Israelo ke sath Misr mein bhagne mein safal honne se pehle 10 baar prayas kiya tha. Hum mashare kar sakte hain yadi Nephi aur Musa dono prabhu ka karya kar rahe the to prabhu ne kyun nahi unhe unke pehle prayas mein safal kiya, kyun vah unhe aur kyun vah hame bahut si kathnaiyon aur samasyaon ka samna karne ki anumati deta hai aur hum apne prayason mein asafal hote hain. Is prashn ke bahut se mahatvapurn utron mein kuch is prakar hain. Pehla, प्रभु जानता है कि ये सब बातें हमें अनुभव देंगी और हमारी भलाई के लिए होंगी. दूसरा, हमें कड़वे अनुभवों को ताकि हम भलाई के प्रतिफलों को जान सकें. तीसरा, साबित करने के लिए कि युद्ध प्रभु का है और उसके महान अनुग्रह के द्वारा हम उसके कार्य को कर सकें और उसके समान बन सकें. चौथा, हमें मसीह समान गुणों का विकास करने और प्राप्त करने में मदद के लिए जो बिना विरोध और कष्ट की भट्टी में डाले शुद्ध नहीं किए जा सकते. इसलिए बाधाओं से भरे और अपूर्ण जीवन के माध्यम हम अतिरिक्त मौकों के आभारी हैं. 1970 में बीवायू में नए प्रथम वर्ष के छात्र के रूप में मैंने भौतिकी के आवश्यक पाठ्यक्रम के लिए दाखिल लिया जो एक उत्कृष्ट प्रोफेसर जे बेलिफ द्वारा पढ़ाए जाते थे. पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई के बाद वह परीक्षा लेते थे. यदि छात्र को सी मिला तो वह बेहतर ग्रेड चाहता था तो प्रोफेसर बिलफ उस छात्र को उसी विषय की संशोधन परीक्षा देने की अनुमति देते थे. यदि प्रयास में छात्र को बी मिलता तो वह फिर भी संतुष्ट ना होते तो तीसरी बार और चौथी बार और आगे परीक्षा दे सकता था. मुझे कई बार अतिरिक्त मौके देकर उन्होंने मुझे क्लास से बेहतर करने और अंततः ए लाने में मदद की. वे असामान्य रूप से बुद्धिमान प्रोफेसर थे जिन्होंने अपने छात्रों को निरंतर प्रयास करने असफलता को एक बार सबक समझना ना कि दुर्भाग्य और असफलता से भय नहीं परंतु इससे सीखने के लिए प्रेरणा और उत्साह दिया. हाल ही में उनके भौतिकी के पाठ्यक्रम को लेने के 47 वर्षों बाद मैंने इस महान व्यक्ति को फोन किया. मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने छात्रों को अच्छे ग्रेड लाने के लिए अनगिनत मौके दिए थे. उनका उत्तर था, मैं स्वयं को छात्रों के पक्ष में होना चाहता था. गलतियों या मन की सफलता के बाद जब हमें प्रेरणा मिलती है और अतिरिक्त मौकों के लिए आभारी होते हैं तो पाप या हृदय की असफलताओं पर विजय प्राप्त में अतिरिक्त मौके दिए जाने के लिए उधारकर्ता के अनुग्रह पर हम चकित होते हैं. उधारकर्ता से अधिक हमें हमारे पक्ष में और कोई नहीं है. वह हमें बार बार उसके परीक्षा लेने के लिए मौका देता है. उसके समान बनने के लिए प्राकृतिक मनुष्य के साथ हमारे प्रतिदिन के संघर्षों में अनगिनत आंतरिक मौकों की आवश्यकता होती है, जैसे इच्छाओं पर नियंत्रण करना, धैर्य रखना और क्षमा करना सीखना, आलस पर विजय प्राप्त करना, गलती से पाप करने से बचना. इनमें से कुछ है. यदि गलती करना मनुष्य की प्रकृति है तो हमें कितनी गलतियां करनी होगी ताकि हमारी प्रकृति मनुष्य की ना होकर दिव्य हो जाए, हजारों शायद लाखों से अधिक. ये जानते हुए कि फिर असफलता हमारे रोज की घटना है, उधारकर्ता ने अनंत कीमत चुकाई है हमारे इस नश्वरत्व की परीक्षा में असफल से उत्तीर्ण होने के लिए. हमारे प्रतिरोधक जिनकी वह अनुमति देता है कभी लगता है कि दुर्गम और सहन करने के लिए लगभग असंभव है, फिर भी वे हमें आशा के बिना नहीं छोड़ते. अपनी आशा को सक्रिय रखने के लिए जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं उधारकर्ता का अनुग्रह हमेशा तैयार और सदैव उपस्थित रहता है. उसका अनुग्रह मदद या शक्ति का दिव्य माध्यम है, एक बल देने वाली शक्ति जिससे पुरुष और महिला उनका समय का सर्वोत्तम करने के बाद अनंत जीवन और उत्कर्ष कथा में रहते हैं। उसका अनुग्रह और उसकी प्यार करने वाली आंखें हमारी संपूर्ण यात्रा के दौरान सदा हम पर रहती हैं। जब वह प्रेरणा देता, बोझों को हल्का करता, शक्ति देता, मुक्ति देता, सुरक्षा देता, चंगा करता और अन्य तरह से अपने लोगों की सहायता करता है, तब वह तंग और सकरे मार्ग में ठोकर खाते हैं। पश्चाताप परमेश्वर का हमेशा उपलब्ध उपहार है, जो हमें बिना उत्साह खोए बार बार असफल होने की अनुमति देता और योग्य बनाता है। पश्चाताप हमारे असफल होने की स्थिति में कोई वैकल्पिक योजना नहीं है, पश्चाताप उसकी योजना है। ये जानते हुए कि हम गलतियां करेंगे, यह पश्चाताप का सुसमाचार है। जैसा अध्यक्ष रसल एम नेल्सन ने बताया, ये हमारा जीवन भर एक पाठ्यक्रम है। पश्चाताप के इस जीवन भर के पाठ्यक्रम में प्रभु भोज उसकी क्षमा तक निरंतर पहुंचने के मार्ग को उपलब्ध कराने का उसका निर्धारित तरीका है। यदि हम इसमें टूटे हृदय और पश्चातापी आत्मा से भाग लेते हैं, तो वह हमें साप्ताहिक क्षमा प्राप्त करने का मौका देता है। हम अनुबंध के मार्ग पर बार बार सफल हुए होंगे और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके पापों के होते हुए भी उनके प्रति मेरा प्याले करुणा से भरे हैं। लेकिन वह हमें कितनी बार माफ करेगा? कब तक वह धैर्य रखेगा? एक मौके पर पतरस ने उद्धारकर्ता से पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? मुमकिन है पतरस ने सोचा था 7 एक काफी बड़ी संख्या है। बहुत अधिक बार क्षमा करके गलतियों पर जोर डालने के लिए और उदारता से की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जवाब में उद्धारकर्ता ने असल में पतरस से गिनती ना करने, क्षमा की सीमा स्थापित ना करने को कहा था। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार का 70 गुणा तक। स्पष्ट है कि उद्धारकर्ता ने 490 की उत्तम सीमा स्थापित नहीं की थी, अन्यथा इसका अर्थ होगा कि प्रभु भोज में भाग लेने की सीमा 490 है। और तब 491वीं बार स्वर्गीय ऑडिटर बीच में रोक देगा और कहेगा, मुझे बहुत खेद है, आपके पश्चाताप कार्ड की अवधि समाप्त हो गई है, इसके बाद आप पश्चाताप नहीं कर सकते। प्रभु ने 7 बार का 70 गुना के गणित का प्रयोग अपने असीम पराश्रित, अपने बंधन रहित प्रेम और असीमित अनुग्रह की उपमा के तौर पर किया था। हाँ, इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु भोज पाप करने का लाइसेंस है। इस कारण प्रभु ने मोरने की पुस्तक में इस वंक्यांश को शामिल किया था, परंतु जैसे जैसे सच्ची निष्ठा से पश्चाताप करते और क्षमा प्राप्त करते, उन्हें क्षमा कर दिया जाता है। सच्ची निष्ठा का अर्थ है वास्तव में प्यार करना और सच में बदलना। बदलना मुख्य शब्द है जिसे धर्मशास्त्रों की निर्देशिका पश्चाताप और परिभाषित करने के लिए उपयोग करती है। मन और हृदय का बदलना, जो मुख्य रूप से परमेश्वर के प्रति, समय के प्रति और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण लाता है। इस प्रकार का बदलना आत्मिक विकास में परिवर्तन होता है, जहाँ हमारी सफलता बार बार असफल नहीं होती, बल्कि बार बार असफल होते हुए भी बिना उत्साह में कमी के आगे बढ़ती जाती है। बदलना के विषय में इस सरल दृष्टिकोण में विचार करें, बातें जो बदलती नहीं है वैसे ही रहती हैं। इस प्रत्यक्ष सच्चाई का अर्थ आपको मूर्ख बताना नहीं, बल्कि यह अध्यक्ष व्हाइट के पैकर का अथाह ज्ञान, जो आगे कहते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं बदलते, हमारा विकास रुक जाता है, क्योंकि हम खत्म नहीं होना चाहते जब हम मसीह के जैसे बन जाते हैं। इसलिए हमें उठाना पड़ेगा हर बार जब हम गिरते हैं, यह इसका रखते हुए कि हमारी कमजोरियों के बावजूद बढ़ती और प्रगति करते हैं। हमारी कमजोरी में वे हमें आश्वासन देता है, मेरा अनुग्रह है ये तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में परिपूर्ण होती है। केवल कलांतर फोटोग्राफी के समान विधियों द्वारा ही हम अपने सांसारिक विकास को नाप सकते हैं। उसी प्रकार केवल कालांतर फोटोग्राफी के समान विधियों द्वारा ही हम अपने सांसारिक विकास को नाप सकते हैं। उसी प्रकार हमारा आत्मिक विकास अक्सर अति सूक्ष्म होता है, जिसे केवल अतीत में ले जाने वाली आंखों से ही देखा जा सकता है। नियमित रूप से अपने विकास का इन आंखों से आत्मविश्लेषण करने और नई आशा के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वयं को प्रेरणा देने में बुद्धिमानी है। मैं प्रेमपूर्ण दया धैर्य और सहनशीलता के लिए स्वर्गीय पिता माता पिता और उद्धारकर्ता का भारी हूँ जो उनकी उपस्थिति में वापस जाने की हमारी यात्रा में हमें अनगिनत अतिरिक्त मौके देता है यीशु मसीह के नाम से आमीन।
हम मॉर्मन गायक मंडली का सुंदर संगीत के लिए जो उन्होंने इस सुबह दिया है आभार व्यक्त करते हैं। इस अधिवेशन के समापन में हमारे वार्ताकार एल्डर नील एंडरसन बारा परिषद के होंगे। उनकी वार्ता के पश्चात गायक मंडली इस सभा का समापन माय रिडीमर लिव्स गाकर करेगी। समापन प्रार्थना एल्डर डब्ल्यू मार्क 62-70 के द्वारा दी जाएगी।
I add my welcome to Elder Garrett Gong.
मैं एल्डर गैरिक गॉन और एल्डर यूरिसिस को 12 के परिषद के हमारे अद्वितीय भाईचारे में स्वागत करता हूं। प्रभु के भविष्यवक्ता और अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के अध्यक्ष नर्स रसल एम नेल्सन के रूप में अपना समर्थन देने में हम दिव्य आदेश महासभा का सिमते महा क्योंकि पिछले घंटे की घटनाओं की अपेक्षा स्वर्ग में हमारे पृथ्वी पूर्व से की जाती रही है। प्रभु यीशु मसीह ने जो पृथ्वी पर अपने कार्य का निर्देशन करते हैं आज अध्यक्ष आयरन के द्वारा अपने भविष्यवक्ता नियुक्त और मार्गदर्शक को हम सबके सामने अनुभूतित लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया ताकि हम सार्वजनिक रूप से भविष्यवक्ता का समर्थन और उनकी सलाह का पालन करने की सम्मति प्रकट करें। जो बहुत से हमारे साथ आज नहीं है और इस महासभा केंद्र में नहीं है बल्कि संसार भर के आराधनालयों में उपस्थित हैं, ऐसे एशिया अफ्रीका उत्तर और मध्य दक्षिण अमेरिका यूरोप के घरों में प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में सागर के अन्य द्वीपों में हो रही हैं। यह सिर्फ इस सम्मेलन केंद्र में नहीं है बल्कि यह पूरे संसार में हो रही है, एशिया के अफ्रीका के उत्तर अमेरिका और मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और यूरोप के घरों में प्रशांत महासागर सागर। यह सभा हमारे संसार के किसी भी हिस्से में आपके साथ है, चाहे आप की संपर्क स्मार्टफोन के ऑडियो से जुड़े हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे ऊपर उठे हुए हाथ हमारे धर्माध्यक्षों द्वारा सिर्फ नहीं गिने गए पर स्वर्ग में भी गिने गए, लेकिन निश्चित रूप से इनका उल्लेख हमारे साथ हमारे अनुवाद के रूप में किया हुआ गया है। भविष्यवक्ता का चुनाव स्वयं प्रभु द्वारा किया जाता है, इसके लिए कोई प्रचार नहीं होता, कोई चिल्लाकर बहस करना नहीं होता, कोई पोस्टर नहीं लगाए जाते, कोई वाद विवाद अविश्वास भ्रम या हंगामा नहीं होता। मैं भी गवाही देता हूं कि स्वर्ग हमारे साथ थे मंदिर के ऊपर रूप कमरे में जब हम प्रार्थना के गैर घेरे में अध्यक्ष नेसल को डाला था और प्रभु के उन पर पूरी तरह से प्रशंसा हमने की थी। प्रभु के भविष्यवक्ता के रूप में अध्यक्ष रसल एम नेल्सन का चुनाव बहुत पहले किया गया था। प्रभु और के शब्द जर्मया को अध्यक्ष के लिए प्रभावशाली है। पेट में बनने से पहले मैं तुम्हें जानता था और उससे पहले तुम जब गर्भ में थे मैंने तुम्हें पवित्र किया और मैंने तुम्हें भविष्यवक्ते के रूप में बुलाया था। सिर्फ 3 वर्ष पहले एल्डर नेल्सन 90 वर्ष की उम्र की आयु में पहुंचे हैं। 3 वरिष्ठ परिषदों के साथ वरिष्ठता में 4th नंबर पे थे। प्रभु जो जीवन और मृत्यु का नियंत्रण करता है अपने भविष्यवक्तों को चुनता है। अध्यक्ष नेल्सन का स्वास्थ्य 93 की अवधि में आयु में बहुत बढ़िया है। हम आशा करते हैं हमारे साथ अगले 2 दशकों तक रहेंगे, लेकिन अभी के लिए हम उन्हें समझाने की कोशिश करें कि ऊंची ढलानों के स्कीप करने ना जाएं। जब हम भविष्यवक्ता का सम्मान द्वारा नियुक्त व्यक्ति के रूप में करते हैं, लेकिन यह बताना महत्वपूर्ण है कि हम केवल अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर और उसके दिव्य पुत्र की आराधना करते हैं। हम केवल उद्धारकर्ता यीशु मसीह की योग्यताओं और दया अनुग्रह के द्वारा ही एक दूसरे की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। फिर यीशु ने हमें यह भी सिखाया, जो मुझे स्वीकार करता है वह मुझे भी स्वीकार करता है, जिसने मुझे भेजा है उसको भी स्वीकार करता है। प्रभु के भविष्य तक सबसे महत्वपूर्ण काम है कि वे मसीह के बारे में सिखाए और उनके निकट लाए। भविष्यवक्ता रसल एम नेल्सन का अनुसरण करने के कई तरसंगत कारण है। बेशक संसार कहता है कि वह प्रतिभाशाली है, जैसा एल्डर स्टीफनसन ने समझाया, वह 22 वर्ष की आयु से डॉक्टर बने, एक सम्मानित हृदय संबंधी शल्य चिकित्सक और ओपन हार्ट शल्य चिकित्सक के विकास में जाने वाले व्यक्ति रहे हैं। दूसरे उनके ज्ञान और न्याय को मानेंगे। 9 दशकों तक उनका जीवन मृत्यु के विषय में अध्ययन, निस्वार्थ से जीवन जीना, संसार के प्रत्येक संसार में बच्चों के साथ प्रेम करना, परिपक्व अनुभव से मिलना, 10 बच्चों का पालन पोषण करना, 57 नाती पोते और पोते पोतियों और 118 पड़ नाती नातिन पड़ पोते पोती है। पिछले बुधवार को उनका 101 और पोता पैदा हुआ है। जो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं आगे कहेंगे, अध्यक्ष नेल्सन ने जीवन की कठिनाइयों को विश्वास और साहस के साथ सामना किया है। जब कैंसर से पीड़ित उनकी 37 वर्ष की बेटी एमली की मृत्यु हुई और अपने प्रेमी पति और 5 छोटे बच्चों को छोड़कर चली गई, मैंने उन्हें कहते सुना था, मैं उसका पिता, एक मेडिकल डॉक्टर, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित, लेकिन मैंने अपना सर झुकाया और स्वीकार किया, मेरी नहीं अपितु आपकी इच्छा पूरी हो। यद्यपि हम इन सब महान गुणों की तारीफ करते हैं, जब हम अध्यक्ष नेल्सन का अनुसरण करते हैं, क्यों हम उन्हें मीनार पर पहरेदार नियुक्त करते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस पहरेदार पर नियुक्त किया है। कार्कसॉन फ्रांस में एक दीवार से घिरा एक शानदार शहर है जो मध्यकालीन युग से वहां कायम है। ऊंची मीनारें इसके साथ की सुरक्षित द्वार से ऊपर निकलती हैं, ताकि जो उन पहरेदारों के लिए बनी है जो दिन रात मीनारों पर खड़े होकर दूर से आते हुए शत्रु को नजर रखते हैं। जब पहरेदार शत्रु को आता देखता है तो उसकी चेतावनी भरी आवाज कार्कसॉन के लोगों को उस खतरे से बचाती है जिसे वे स्वयं नहीं देख सकते। एक भविष्यवक्ता मीनार पर पहरेदार के समान है, जो हमें उन आत्मिक खतरों से बचाता है जो शायद हम नहीं देख सकते। प्रभु ने यजकेल से कहा था, मैंने तुम्हें इज़राइल के घराने का पहरेदार ठहराया, तू मेरे मुंह से वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेतावनी दे। हम अध्यक्ष नेल्सन को ग्रहण करना जैसे हम पत्रस और मूसा को ग्रहण करते हैं। यदि हम उसके समय में होते, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, संग होकर मुझे करना है जो तुझे मैं सिखलाता हूं, मैं प्रभु के भविष्यवक्ता के शब्द का सुनता हूं ताकि वह शब्द सुनाई दें।
We listen to the Lord's prophet with the faith that his words are from the Lord's own mouth. Is this blind faith?
क्या यह विश्वास अंधा है? नहीं, यह नहीं है। हम सब के पास यीशु मसीह के सुसमाचार की पुनः स्थापना की सच्चाई की आत्मिक गवाही है। हम अपनी स्वयं की इच्छा और मर्जी से आज सुबह हमने अपने हाथ उठाकर अपनी अभिलाषा का प्रदर्शन करते हुए हमारे भरोसे और हमारे विश्वास को हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की भविष्यवक्ता का समर्थन और उसकी सलाह का पालन करने का प्रकट किया। अंतिम दिनों के संतों के तौर पर व्यक्तिगत पुष्टिकरण प्राप्त करते हुए हमारा सौभाग्य है कि अध्यक्ष नेल्सन द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जबकि मेरी पत्नी कैथी अध्यक्ष नेल्सन को लगभग 3 दशकों से जानती है, उनकी दिव्य दिव्यता के बारे में उनकी नियुक्ति और प्रथन का कोई संदेह नहीं है। मेरी पत्नी ने उनके सारे महासम्मेलन की वार्ताओं को पिछले 34 वर्षों से पढ़ना आरंभ किया था। वह उनकी भविष्यवक्ता संबंधी भूमिका के लिए गहन आश्वासन की प्रार्थना करती है। मैं आपसे वादा करता हूं, यह महान गवाही आपको मिलेगी जब आप विनम्रता और योग्यता से इसके लिए प्रार्थना करते हो। हम क्यों हमारे भविष्यवक्ता का अनुसरण करने के लिए इतने इच्छुक हैं? क्योंकि वे जो परिश्रम से अनंत जीवन की खोज करते हैं, उनके लिए भविष्यवक्ता की वाणी इस अति अशांत समय में आत्मिक सुरक्षा लाती है। हम ऐसे ग्रह में रहते हैं जहां लाखों आवाजें हमें विभिन्न कार्य करने को कहती हैं। इंटरनेट, हमारे स्मार्टफोन, हमारे टेलीविजन सेट सब हमारा ध्यान मांगते हैं और हम पर उनका प्रभाव पाड़ते हैं। वो आशा करते हैं कि हम उनके उत्पादकों और मानकों को अपनाएंगे। निरंतर मिलने वाली सूचना, विचार हमें धर्मशास्त्रों की चेतावनी की याद दिलाती है। हर एक ब्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। हवा बहती है और मनुष्यों की ठग विद्या से प्रभावित होते हुए और उनके द्वारा हराए जाते हैं जो धोखा देने के लिए पश्चित करते हैं। भविष्यवक्ता की विश्वसनीयता का अनुकरण करना हमें जरूरत है। हम उसको सुने जिसने हमें भेजा है। इस हंगामे की दुनिया में भविष्यवक्ता के पीछे चलना एक ठंडे दिन और नरम नरम कंबल में ओढ़ने जैसा है। हम दलील, बहस, तर्क, वितर्क और सफिस्टिकरण के संसार में रहते हैं। क्यों? पूछना हमारे जीवन के कई पहलुओं में सकारात्मक है। यह हमारी बुद्धि की शक्ति को प्रतिदिन सामना किए जाने वाले चुनाव और निर्णय को लेने मुमकिन करता है। लेकिन प्रभु की वाणी अक्सर बिना किसी स्पष्टीकरण के आती है। लंबे समय से शिक्षाविदों ने पत्नियों और बच्चों के विश्वास पर बेवफाई के प्रभाव का अध्ययन किया। प्रभु ने कहा, तू व्यभिचार न करना। इस बुद्धि से और अपने आत्मा के तोहफे को याद रखना। जब भविष्यवक्ता की वाणी कोमलता से बोलती है तो अक्सर हमें परिवर्तन, पश्चाताप करने के लिए और परमेश्वर के पास लौटने को कहती है। जब हमें कोई सुधार करने की आवश्यकता हो तो हम देरी ना करें। हम चिंतित ना हो कि जब भविष्यवक्ता की वाणी आजकल के लोकप्रिय मान्यताओं के विरुद्ध चेतावनी देते। कई बार बहुत निराश, अविश्वासी लोग भविष्यवक्ता के शब्दों की तुरंत आलोचना करना आरंभ कर देते हैं, जैसे ही उन्हें सुनते हैं। जब हम प्रभु के भविष्यवक्ता की सलाह और शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं तो मैं आपसे एक अतिरिक्त सुरक्षा की शांति की आशीषवादी करता हूँ। आश्चर्य ना करें यदि आरंभ में आपके विचार हमेशा प्रभु के भविष्यवक्ता के समरूप नहीं होते। यह क्षण सिखाने विनम्रता के साथ होते हैं। जब हम अपने प्रार्थना में घुटने के बल झुकते हैं तो हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, विश्वास रखते हुए कि समय आने पर स्वर्गीय पिता से हमें अधिक स्पष्ट आत्मिकता मिलेगी। एक भविष्यवक्ता ने उधारकर्ता के अतुलनीय उपहार का अपवर्णन किया। पुत्र की इच्छा पिता की इच्छा में समा गई। परमेश्वर की इच्छा समक्ष अपनी इच्छा का समर्पण असल में आत्मसमर्पण नहीं अपितु महिमापूर्ण विजय का आरंभ है। कुछ भविष्यवक्ता के शब्दों को बहुत ही अधिक विश्लेषण करते यह निश्चय करने के लिए कि संदेश करते हैं कि उसकी भविष्य संबंधी वाणी क्या है और उनकी व्यक्तिवेद क्या रहा है। एक 1982 में जनरल अधिकारी की नियुक्ति से 2 साल पहले भाई रसल एम नसल ने कहा था, मैं स्वयं से कभी नहीं पूछता कब भविष्यवक्ता के रूप में भविष्यवक्ता बोलता है और कब नहीं बोलता। मेरी दिलचस्पी इसमें रहती है कि मैं उसके समान कैसे बनूं। उन्होंने आगे कहा, मेरा सिद्धांत है कि यह प्रश्न मत करो कि भविष्यवक्ता का कथन सैद्धांतिक है या नहीं, बस उनका पालन करो। इस प्रकार विनम्र और आत्मिक व्यक्ति अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। 36 वर्ष के बाद वह प्रभु के भविष्यवक्ता हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में पाया है जब मैं प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के भविष्यवक्ता के शब्दों का अध्ययन करता हूं और धीरज के साथ अपनी इच्छा को आत्मिक रूप से उसकी प्रेरित शिक्षाओं के अनुरूप बनाते हुए तो यीशु मसीह में मेरे विश्वास में हमेशा वृद्धि होती है। यदि आप उसकी सलाह की अनदेखी करते हो और सोचते हो कि हम बेहतर हैं तो हमारे विश्वास में कमी होती है, हमारा अनंत दृष्टिकोण धुंधला हो जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप भविष्यवक्ता के पीछे स्थिर रहें, तब मसीह आपकी विश्वास बढ़ेगी। उदारकर्ता ने कहा था, सारे भविष्यवक्ता उन्होंने मेरी गवाही दी है। भविष्यवक्ता हमारे उदारकर्ता के बीच में खड़ा नहीं होता, बल्कि वह हमारे साथ खड़ा होता है और उदारकर्ता की ओर मार्ग दिखाता है। इन अशांत समय में भविष्यवक्ता की आवाज उनके लिए आत्मिक सुरक्षा लाता है। हमारे लिए भविष्यवक्ता की महानतम उपहार उसकी दृढ़ गवाही है कि यीशु ही मसीह है। पत्रस के समान हमारे भविष्यवक्ता कहते हैं, वह मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। भविष्य में हमारे मानवता पर वापस देखते हुए हम आनंद मनाएंगे कि हम पृथ्वी पर चले जाएं, एक जीता भविष्यवक्ता।
We believed him. We studied his words with patience and faith.
हम उसमें विश्वास करते हैं। हम धैर्य और विश्वास से उसके शब्दों का अध्ययन कर किया है। हमने उसके लिए प्रार्थना की है। हम उसके साथ खड़े होते हैं। हम उससे प्यार करते हैं। मैं अपनी हार्दिक गवाही देता हूं कि यीशु ही मसीह है, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता, और संसार में रसेल एम नेल्सन उनके भविष्यवक्ता हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हमारे प्रिय पिता, इस प्रथम सत्र महासम्मेलन में हम समापन में हम आपका आभार प्रकट करते हैं और जो बातें हमने सुनी हैं विशेषकर और जो हमने महसूस की हैं, हम आपसे पूछते हैं परमेश्वर कि हमें आशीष दीजिए उन कामों को हम करें जो हमें सही मार्ग पर ले जाएं, आपके निकट लाए। हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिता उस महासभा के लिए और उस सौभाग्य के लिए और आशीषों के लिए, अपने हाथों को खड़ा करने के लिए और अपने दिलों को एक करने के लिए। हमारे प्रिय भविष्यवक्ता अध्यक्ष नेल्सन को समर्थन करने के लिए और उनकी परिषद को, 12 परिषद को, हम अपने भविष्यवक्ता से प्रेम करते हैं। हम उन अनुभूतियों के लिए आपके बहुत आभार देते हैं जब हमने हाथ खड़ा करने पर महसूस की और अपने हाथों में उनको अपने दिलों में मजबूत महसूस किया। हम उनके लिए आशीष चाहते हैं कि हमारे हाथ दिल भरे जाएं और एक हों ताकि हम सब एक हो सकें, ताकि हम उसके द्वारा हम अनुबंधित लोग बन सकें। हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारे आभार को व्यक्त करते हैं इस पवित्र मौके पे, विशेषकर इस आपके पुत्र के लिए, उनके जीवन, उनके बलिदान और उनके पुनरुत्थान के ज्ञान के लिए। और ये सब बातें हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजाघर का 188वां वार्षिक जनरल कॉन्फ्रेंस प्रसारण था। वार्ताकारों को जनरल अधिकारियों और गिरजे के जनरल कार्यालयों से चुना गया था। संगीत मॉर्मन गायन मंडली द्वारा दिया गया था। पौने मिला डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस प्रसारण का प्रबंध जन सेवा के लिए किया गया था। कोई भी पुनरुत्पादन करना, रिकॉर्डिंग, प्रतिलिपि बनाना या इस कार्यक्रम का दूसरा प्रयोग करना बिना किसी लिखित सहमति के वर्जित है।